श्लोक को दूसरे रूप में काव्य उसके साहित्य दर्पण का उस श्लोक को बदल करके और अपने भाव में लेकर के प्रियम स्वयं सहचर्य इत्यादि महाप्रभु देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले जे तुम कैसे जान लिया हमारे मन के भाव को, और तो कोई नहीं जाना। इतने में स्वरूप दामोदर खड़े थे और राय रामानंद थे और सब लोग वहां पर बैठे थे। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, आपके भाव को बिना आपके जनाने दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिसको आप जना देंगे वही जानेगा। ब्रह्मा जी ने भी ऐसी स्तुति की है श्रीमद् भागवत में, लंबा चौड़ा आख्यान हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कह रहा। कभी प्रसंग आएगा तो उसमें हम लोग व्यक्त महाराज जी इत्यादि करेंगे। तो उन्होंने ये भाव लिखा, उसका भाव ये था, वही हमारे प्रियतम कृष्ण है आप, और मैं ही उनकी पुरानी वही प्रियतमा हूं। हम लोगों का दोनों का मिलन भी वैसा ही है कुरुक्षेत्र में, और आज वही हमारे वर बने हैं, कौमार हर हैं। कौमार हर माने के कौमार को जो हरण करता है, अर्थात विवाह के माध्यम से कौमार से वैवाहिक जीवन में आया जाता है, इसलिए हमारे कौमार को हरण करने वाले वही आज हमारे प्रियतम हम देख रहे हैं उनको। और वही चैत्र महीने की का ये दिन है, बासंती हवा भी बह रही है, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष और ये सब हैं, वो भी हवा भी आ रही है, पंच सरोवरों से बड़ी सुशीतल हवा भी आ रही है, किंतु हमारा मन उत्कंठित हो रहा है कहाँ के लिए, वृंदावन। यहाँ पर सुंदर कदम्ब के वृक्ष, बेली चमेली इत्यादि है, जमुना में कमल खिले हैं और उसका सुंदर सुशीतल हवा लेकर के सुगंधित वो आ रही है। और जहाँ पर हमारा तुम्हारा उसी वृंदावन में हमारा चित्त उत्कंठित है, हम दोनों मिले। यहाँ हाथी घोड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नरेश हैं, सभी लोग देवकी और वसुदेव जी हैं। तुम्हारा वेश तो हमको मार डालता है, आज तुम क्षत्रिय वेश में हो, मोर मुकुट तुम्हारा कहाँ गया, तुम्हारी लठी और लकुटी कहाँ गई, कमलिया कहाँ गई, आज तुम नंदनंदन और यशोदा नंदन नहीं हो, आज आप रुक्मिणी कांत है, राधा कांत नहीं है, गोपी कांत नहीं है। इसलिए यदि हमको प्रसन्न करना है, हमारी अभिलाषा पूर्ण करना है, तो आप वृंदावन हम अपने मनोरथ पर आपको लेकर के चलेंगे। अन्य हृदय मन और दूसरों का जो मन है वो मन है, विषय उसमें चिंतन होता है। हमारा मन वृंदावन है, यदि हमारे मन में ही हमको ध्यान की शिक्षा आपको देनी है और आपको हमारे मन में आना है तो वृंदावन में पधारिए, क्योंकि हमारा मन और वृंदावन एक है, हमारा हृदय और वृंदावन एक, हमारे हृदय में उदित होइए, हमारे ध्यान में उदित होइए, अर्थात वृंदावन में अपने चरण कमलों को ले चलिए, तब कहीं जा सकते। इस श्लोक को देख करके चैतन्य महाप्रभु भाव हुए और कहा सब लोगों से हाथ जोड़ करके, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर जितने उनके परिकर थे, सबसे कहा जैसे ये इस लड़के में आप लोग कृपा शक्ति संचार करें, जो हमारे भाव को ये जगत में प्रकाश कर सके। और हुआ है ऐसा, श्री चैतन्य भूतले स्वयं रूप कदा मरियम ददाति, चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को सिद्ध रूप गोस्वामी ने वृंदावन से ग्रंथ लिखते हुए, जब वृंदावन से आए रहे थे महाप्रभु के दर्शनों के लिए, तो रास्ते में उन्होंने एक ग्रंथ लिखना आरंभ किया, उसका नाम रखा ललित माधव साहब। उसमें पूर्व की लीला अर्थात वृंदावन की लीला और पूर की लीला माने घर का लीला दोनों को मिला करके लिख रहे थे। और श्रीमद् भागवत जैसे दुखांत है, विरह युक्त है, उन्होंने विरह के बाद में मिलन दोनों का संयोग कराना के लिए चाहते थे, और ये बतलाना चाहते थे रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि राधिका और उनकी सखियों के ही प्रकाश विग्रह हैं, अलग से नहीं है, ये दिखला करके दोनों में मिलन कराना चाहते, इसलिए दोनों का मंगलाचरण, नंदीमुख और सब जो चीजें हैं एक ही कर करके वो लिख करके आ रहे हैं। काशी में सप्तभामापुर में जब आए उड़ीसा की सीमा में, रात में विश्राम कर रहे थे, हठात करते उनको स्वप्न हुआ, देखो तुम पूर्व की लीला को और वृंदावन को एक मत मिलाना, अलग अलग से करना। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी उनको ऐसे ही कुछ, यहाँ जब आए तो उन्होंने महाप्रभु जी ने भी ऐसा कुछ उनको कहा, प्रेरणा दी, ये दोनों को लीलाओं का एक मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग नहीं समझ सकेंगे। अलग अलग
कृष्ण को ब्रज से बाहर मत,
कृष्ण को ब्रज से बाहर मत निकालना। वृंदावनम प्रत्यज्य, वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण जाते नहीं, उनको कहीं द्वारका और मथुरा में मत ला देना, और द्वारका वाले को ब्रज में मत पहुंचाना। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के रूप गोस्वामी ने यहीं पर ललित माधव और विदग्ध माधव उसको दो खंडों में कर करके यहीं से आरंभ किया और इसको पूर्ण किया, जा करके वृंदावन में राधा दामोदर जी जहाँ है सेवा कुंड में जा करके अपने भजन स्थली में इसको पूरा किया, किंतु आरंभ यहीं से किया, ये स्थान हो सकता
है। यहीं पर महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों के साथ में इस ग्रंथ का श्रवण किया।
महाप्रभु ने जब श्रवण किया तो उसमें अनर्पित चरण चिरात जब लिखा और उसका पाठ किया नंदी मुखी श्लोक, महाप्रभु जी ने कहा हाय 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 क्या कर दिया, एक घड़ा अमृत और उसमें दे दिया
एक बूंद सूरा,
सूरा दे दिया मिला करके चौपट तुमने कर दिया, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा था। स्वरूप दामोदर जी ने कहा नहीं, ये घना दूध था, इसमें कर्पूर इलायची और ये सब चीजों को दे करके इसका सुगंध और बढ़ा दिया, माधुर्य बढ़ा दिया, पहले जरा पतला दूध था, इसने घना दूध करके और उसमें कपूर और तरह तरह के केवड़ा इत्यादि दे करके बहुत ही सुरस सुगंधित बना दिया। ये चैतन्य चरितामृत में ये यही श्लोक को लेकर के हमारे कृष्णदास कबीराज गोस्वामी ने वंदना की है। सबसे पहले इसका अर्थ हम कुछ कुछ बतलाए, पूज्यपाद महाराज जी आगे बतलाएंगे, आज बहुत विलम्ब हो गया है, आज हम लोग प्रणाम करते चले, समय अनुसार में और सो जो बातें हैं हम बतलाएंगे। उनके निर्जान का समय भी, निर्जान का भी महाराज ने बात बतलाया कि यहीं पर हरिदास ठाकुर जबकि प्रसाद ग्रहण नहीं किया लेकर के आए तो उन्होंने कहा जो आज लंघन करूँ, आज के
करूँ लंघन,
आज प्रसाद नहीं ग्रहण करूँगा, आज मेरी तबीयत खराब है। महाप्रभु दौड़ करके आए, पूछा कि क्या आपको हो गया, नहीं कुछ नहीं हो गया, आज नाम संख्या पूरा नहीं हुआ। महाप्रभु तुम्हारा नाम संख्या तुम्हारा बहुत सब समय पूरा हो गया, आप कुछ प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा नहीं, आज तो आप यहीं पर रहें, आपका ये मुख दर्शन करता रहूं, आपके चरण को अपने हृदय में धारण करूं और कृष्ण कृष्ण कहता हुआ आपके सामने इस शरीर को मैं त्याग कर दूं, आपका जब चले जाएंगे आपका विरह हम नहीं सह सकते हैं, इसलिए पहले मैं जाना चाहता हूं। ऐसा कर करके महाप्रभु जी उनको कीर्तन करने लगे, बेड़ा कीर्तन, सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे और उनको सिर अपने गोदी में ले लिया और ये कृष्ण कृष्ण कहने लगे, महाप्रभु जी का मुखारविंद दर्शन करते करते हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
पूरा नहीं कर सके और शरीर को त्याग कर दिया। महाप्रभु जी उठा करके उनको ये देखे ले जाए अप्राकृत कलेवर को और अपने हाथ से हमारा जो मठ है वही मठ ही हरिदास ठाकुर जी का समाधि का स्थान, समाधि कर दिया, समाधि माने समधि, सम जो भगवान के सेवक होते हैं भगवान ही जैसे होते हैं उस रूप में कर दिया और अपनी सेवा में सदा के लिए नियुक्त कर दिया। बोलो हरिदास ठाकुर
जय।
नारायण व्याकरण में मंदिर छिल উপস্থিত হয়েছি এটা হচ্ছে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান, তিনি ছিলেন বৃহস্পতির অবতার, তিনি অদ্বৈতবাদের তদানন্তনকালেতে ভারতবর্ষ মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। তিনি আবার রাজা রাজার এখানকার প্রতাপরুদ্ধ রাজা
রাজপণ্ডিত
রাজপণ্ডিত ছিলেন, হয় কে নয় নয় কে হয় করতেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মের তিনি আরাধনা করতেন। পরবর্তীকালে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনি প্রভাবিত হয়ে পরম বৈষ্ণব হয়েছিলেন। মহাপ্রভুজিকে এইখানে প্রসাদ পাইয়েছিলেন, তারপরে এইখানে সাত দিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করিয়েছিলেন। মহাপ্রভু এইখানে বসে শুনেছিলেন, সাত দিন শুনবার পরে কি রকম হয় তাহাকে কৃপা করলেন, কি কি বিচার হয়েছিল। পরবর্তীকালেতে ওই পুটিয়া নরেশের কন্যা সুচী দেবী এইখানে এসে কিরকম হয়তো স্থানটাকে আবার উদ্ধার করলেন, আবার সুরম্য এই সবগুলি প্রতিষ্ঠিত হলো, রাজভবন আবার পুনর ইটা হলো, আর এইখানে কিরকম হতে কি শ্যামরায় দুনো না ও কেসে ইহা পর স্বয়ং উনকি সেবা লেনে কে লিয়ে পধারে, রাজা ভি গঙ্গা মাতা ঠাকুরানী কা শিষ্য বন গয়া, আর জগন্নাথ জি কে পাদ পদ্ম সে কেসে গঙ্গা নিকলি আর উসমে ও জগন্নাথ জি কে মন্দির মে চলি গই, আর ফির রাজা সব লোক উনকে পরিকর সব লোক উনকে শিষ্য বনে। ये सब घटनाओं से संबंधित स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। इसके संबंध में श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को कुछ चलो जी गंगा स्नान करबो তখন সব ভক্তরা গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে।
আগে গঙ্গা মাতা কি বলে দিন, আমি
গঙ্গা মাতা হচ্ছেন কুটিয়া নরেশের কন্যা সতী দেবী, তিনি বাল্যকাল থেকে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, আর মনে মনে কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর কোহি উনোনে পতি আপনা বনা দিয়া, জেসে গোপীয়কে প্রাণ প্রিয়তম হ্যাঁ এসে উনোনে বনা দিয়া, আর কিছু সে শাদি নেই করেন। কুছ দিনো কে বাদ মে উনকে পিতা মাতা জব চলে গে স্বর্গবাস উনকা হো গয়া, তো ইয়ে ঘর ছোড় করকে পহলে জগন্নাথপুরী মে আই, আর ইহা পর জগন্নাথ জি কা সব দর্শন কিয়া, আর দর্শন কারণে তাকে তৃপ্তি নেই হো তো ফির বৃন্দাবন মে গই। উস সময় রূপ গোস্বামী জি কে পরিকর আর গদাধর পণ্ডিত কে শিষ্য আর উনকে শিষ্য হরিদাস জি গোস্বামী জি গোবিন্দ মন্দির মে প্রধান পূজারী থে, বড়ে বিদ্বান আদমি থে, বড়ে ভক্ত থে, রসিক ভক্ত থে, বৃন্দাবন মে ঘুমতে ঘুমতে উনকে চরণ মে গই, উনকে চরণ মে প্রণত হোকর কে উসনে কহা হম আপসে মন্ত্র লেনা চাহতি হ্যাঁ আর ভজন শিক্ষা চাহতি হ্যাঁ। উনোনে কে নাই তুম সুখবারি বালিকা হ্যায় রাজা কি লড়কি হ্যায় তুম আপনে ঘর মে চলি যাও, ইয়ে বৃন্দাবন মে রহনা বড়া ভারি মুশকিল হ্যায়, তুমারী রক্ষা করনে কে লিয়ে চিন্তা করেঙ্গে না ভজন করেঙ্গে। কিন্তু উসকে ভাবনা কো দেখ করকে আর দৃঢ়তা দেখ করকে উনোনে উসকো গ্রহণ কর লিয়া আর উনকো গোপাল অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র দিয়া। বড়ি বিদুষী মহিলা থি, বিদ্বান থি ভি, উনকে জিতনে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু উজ্জ্বল নীলমণি ইত্যাদি জিতনে গ্রন্থ থে সবকা বিধিবত অধ্যয়ন কিয়া আর শ্রবণ কিয়া। কুছ দিনো কে বাদ মে উনকে এক আর শিষ্যা থি প্রৌঢ় হরিদাসী ইয়া ক্যা নাম থা, উসকে হাত জেসে মহাপ্রভু জি নে দে দিয়া থা স্বরূপ দামোদর কো রঘুনাথ কো, তখন রঘুনাথ স্বরূপের দাম উনি হলেন রঘুনাথ, এসে হি উনোনে উসকো প্রৌঢ়া যে উনকি ভক্ত থি শিষ্যা উনকো দে দিয়া, তুম ইসকি রক্ষা করনা পালন পোষণ করনা ইসকে ভজন কর সকে এসে তুম ব্যবস্থা করনা। কুছ দিনে কে বাদ মে কাজে যাও তুম রাধা কুণ্ড মে রহো ভাগবত শ্রবণ করো আর জেসে হমনে কহা হ্যায় পরম বিরক্ত হো করকে আর তুম ভজন করো, ঠিক বেসে তিন লাখ হরিনাম করতি ভাগবত অধ্যয়ন করতি আর উসকা শ্রবণ করতি রূপ গোস্বামী কে গ্রন্থো কা অধ্যয়ন করনে লগি আর গিরিরাজ কি পরিক্রমা রোজ করতি কঠোর ভাব সে, বহুত থোড়া সা সূক্ষ্ম কো আহার লেতি, সোতি নহি, এস প্রকার সে ভজন করতে 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 জব প্রৌঢ় হো গই और उधर में वो हरिदासी जी अप्रकट हो गई। फिर अपने गुरु जी के पास में आई, उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ पुरी में, महाप्रभु जी गंभीरा में रहते थे उसी के पास में सार्वभौम भट्टाचार्य का स्थान था, वो लुप्त हो गया है, तुम वहीं पर जाकर के भजन करो और स्थान को प्रकाश करो, फिर से प्रकाश करो। उस स्थान को कोई नहीं जानता, वो यहाँ पर आई। अर्थात भजन में कुछ अभी सिद्धि में अभी कुछ कमी थी, अब चैतन्य महाप्रभु में गंभीरा जी की कृपा से उसका वो सिद्ध हो गया, इसलिए यहाँ पर भेजा। यहाँ आकर के इसी स्थान पर छोटी सी झोपड़ी बनाई और भजन करती थी, शाम को थोड़ा सा भागवत पाठ करती थी, व्याख्या ऐसा पाठ करती थी। धीरे 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 यहाँ के जितने बड़े बड़े विद्वान लोग आने लगे और राजा उस समय मुकुंद कोई थे, मुकुंद राजा वो भी आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ में जैसे महाराज ने कहा फूल का सुगंध अपने आप फैल जाता है और उसे आकृष्ट होकर के भौरे आने लगते हैं, श्रोता लोग यहाँ पर होने लगे। कुछ दिनों के बाद में राजा ने कहा जैसे ये जगत तुम ले लो, तुमको हम देते, हमको स्वप्न हुआ है, उसने हम लेकर के क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। ठाकुर जी ने फिर उनको स्वप्न दिया, नहीं तुम्हारे गुरु जी ने कहा स्थान को प्रकाश करना है इसलिए तुम ले लो। तो राजा ने उनको ये स्थान दे दिया, वहीं पर अब अपनी पूजा करती और भागवत का पाठ होने लग गया। एक दिन वही यहाँ पर आते हुए गंगा स्नान करने के लिए विशेष तिथि में
गंगा दशहरा,
दशहरा या कोई और होगा त्रयोदशी के दिन कुछ, तो उसमें स्नान करने के लिए सब लोग जाने लगे। इनकी भी जाने की उत्कंठा हुई, किंतु उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। जगन्नाथ ने देखा जैसे हमारी सेवा छोड़ करके और सार्वभौम भट्टाचार्य का सेवित शालग्राम यहाँ पर थे अभी भी है और श्यामराज भी यहाँ पर, इनकी सेवा छोड़ करके कैसे जाएगी, इसलिए जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम ये श्वेत गंगा में तुम रात में स्नान कर लेना और वहीं पर गंगा अपने आप आ जाएगी। रात में आधी रात के समय में श्वेत गंगा में वो गई, जब ही डुबकी लगाई हो हल्ला होने लगा, गंगा जी की जय दे करके मानो लाखों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं और एक धारा जगन्नाथ जी के चरणों से प्रवाहित हुई और प्रवाहित होकर के यहाँ पर आई और उनमें इसको लेकर के और जगन्नाथ मंदिर में उनको पहुंचा दिया। इनको समझ नहीं कि हमको कैसे धारा ले आई, दरवाजा बंद है और खूब जोर से कोलाहल हो रहा है, सब लोग स्नान कर रहे हैं, इतने में दरवाजा सवेरा हो गया और ये तो भजन में अपना भाव में मग्न है। थोड़ी देर के बाद में दरवाजा जब खुला गया तो देखा जी भीतर में ये
बैठी
खड़ी होकर के ना जाने क्या कर रही। उन्होंने कहा ये चोर है, आज तक इसका स्वरूप हम लोग नहीं समझे, ये दरवाजा बंद करने के पहले ये घुस गई थी और जगन्नाथ जी का ही राजवाड़ा लेकर के भग जाएगी इसलिए ये घुस गई थी। उसको कैद कर लिया, राजा को खबर दिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया, इसको छोड़ा नहीं जाए, इसको दंड देना होगा। रात में जगन्नाथ जी ने मुकुंद देव को राजा को स्वप्न दिया, अरे ये हमारी बड़ी प्रिय भक्त है, ये साधारण सिद्ध भक्त है, जल्दी से जाकर के उसे क्षमा मांगो और उसको छोड़ो और तुम और तुम्हारे जितने मंदिर के बड़े बड़े पुजारी हैं
मंत्री
और तुम्हारे सभासद इत्यादि हैं सब लोग जाकर के उससे मंत्र लो और नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जब वो ये स्वप्न देखा बस दौड़ करके आया, राज पुरोहित को परीक्षा को लिया और लेकर के जाकर के उसे क्षमा मांगा और चरणों में गिर गया, देवी आप हमको क्षमा कीजिए, हम लोग आपको जानते नहीं थे, ये लोग जानते नहीं है, इस स्थान पर ले आए। बोले ये सब स्थान तुम्हारा है, पहले तो दे दिया था, अब कहा हम यहाँ पर जो कुछ कहेगी वैसा कर देंगे, तुम हमसे कुछ ले लो। उसने कहा जी हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो जगन्नाथ जी के चरणों में हम आई हैं, महाप्रभु जी के भावों को रूप सनातन इत्यादि के भावों को लेकर के भजन करने के लिए, उनका एक ही भाव है दूसरा भाव नहीं। क्या भाव है? गोपीर अनुगत में रह करके हम राधा कृष्ण जुगल की सेवा करें, बस इसी के लिए हम आए और कुछ नहीं लेंगे। मैं शिष्य किसी को नहीं करती, आपको भी शिष्य नहीं करूंगी। राजा ने कहा जैसे तब तो जगन्नाथ जी की बात झूठी हो जाएगी, आप कृपा करके हमको और ये सब लोगों को शिष्य करें। फिर रात में उनको स्वप्न हुआ जे नहीं देवी आप इन लोगों को मंत्र दीजिए। तब उन्होंने कहा जे मैं और किसी को नहीं दूंगा, केवल आपको दूंगा। मुकुंद राजा को गोपाल मंत्र उनको दिया और भजन में उनको, अब तो सारे पुरी के लोग उनको पहचाने, अरे ये साधारण नहीं, सब लोग यहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने राजा के कहने से राजा ने यहाँ पर विशाल फिर से मंदिर बनाया। श्याम राय वहाँ प्रतिष्ठित थे, उनकी सालग्राम शिला यहाँ प्रकाशित हुई। आप लोगों को पुजारी जी बतला देंगे जो किसका किसका कौन सा विग्रह है, अभी प्राचीन सेवित है। तो उन्होंने फिर से प्रकाश किया। श्याम राम के संबंध में हमने पहले बतलाया है, इन सब की प्रतिष्ठा करके फिर पूजा अच्छी तरह से चलने लगी। शिष्य उन्होंने नहीं किया था कोई इत्यादि, किंतु अंत में जब ये बूढ़ी हो गई तो कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण का कोई विद्वान लड़का था, वो इनके चरणों में गिर गया जो हमको मंत्र दिए हम तो नहीं देंगे। फिर आपने स्वप्न तुम्हारे ये मंदिर की सेवा कौन करेगा, इसलिए तुम इसको मंत्र दे। तो उनके कहने से उनको मंत्र दिया और वो महाप्रभु जी के कृपा से बड़े उन्नत वैष्णव पीछे से हो गए और उनके बाद में उनकी सेवा पूजा करते रहे। आज धीरे 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 आज करीब करीब 300 वर्ष हो गया पुराना मंदिर फिर टूट गया, फिर पानी उधर में चारों तरफ में गिरने लगा। अब किसी प्रकार से यहाँ की सेवा पूजा चल रही है, चल रही है, किंतु छिप्त विक्षिप्त रूप में चल रही है। प्रभु ऐसे ही कोई महापुरुष को यदि भेजेंगे फिर ये स्थान वैसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो गंगा माता ठाकुरानी जी श्री साधन भट्टाचार्य जी कृपा करें, सचिनंदन कृपा हम लोगों पर करें, जो हम लोग भी राधा कृष्ण के इस भजन मार्ग में महाप्रभु के प्रदर्शित भजन मार्ग में प्रतिष्ठित होकर के भजन करके हम लोग कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें, यही प्रार्थना करके अब हम लोग जगन्नाथ मंदिर में चलेंगे। आप लोग यथासाध्य कुछ कुछ प्रणामी यहाँ पर करेंगे जहाँ जा कृष्ण प्रति जी काम, कृष्ण सेवार जन्य जी काम ओटा काम मने हो, किंतु यही कामटा एमन जे यही कामटा जदि एसे जाए ओ सहज भावे ते चल एक बारे सहज भावे और जन कोनो प्रयास करते हैं ओते औसत खेते कुनैन खेते ना एकटू कष्ट आछे। सुगर कोटेड कुनैन खेले कोनो विशेष ही नाई तबे दुर्बलता थाकबे आर ई औसत टमन जे खेते ओ मिष्टी सुनते ओ मिष्टी भीतरे गेले ओ मिष्टी আর তাহার ফলটা ও সব থেকে চলবে এমনইটা দেখতে সাম্য কিন্তু ঠিক বিপরীত। ও নিশ্চিত কাম রোগকে খুব তৎক্ষণাৎ দূর করে, অচিরেণ বলছেন অচিরেণ ধীর, ধীরা মানে পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে কি দুটা ধীর মানে অর্থ করলেন, একটা ধীর মানে হচ্ছে পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে এখানে তত্ত্ব জানে অর্থাৎ যারা এইটি বলে যে হৃদরোগ মানে কামনা বাসনা থাকলেও কখনো প্রেম হতে পারে না, কখনো হতে পারে না, যারা বলছে এরা নাস্তিক, এরা হচ্ছে মূর্খ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠক সদ্যেত কেন শাস্ত্রীতে যে লিখা আছে হৃদরোগ আসু অপিহ্নত্য সুখদেব গোস্বামী অনুভব করে এই কথাটা বলছেন না কে পরীক্ষিত মহারাজ, অতএব নিশ্চিত এটা হোক এই যে তাহারা জানেন ওইটাই নাস্তিক এবং অবিশ্বাস রাহিত্য ওর মধ্যে নাই, এই জন্য এরা পণ্ডিত, শাস্ত্র বিশ্বাসটা আছে। এইরকম হয় ধীর ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধান্বিত শ্রদ্ধাপূর্বক এইটাকে শুনে কতদিন অনুমানে নিরন্তর শুনে আর শুনবার পর অথবর্ণে তখন ভক্তি পরাম ভগবতী ভগবান এতে, ভগবান এখানে কে, ওই যে সর্বব্যাপী যে বিষ্ণু বললেন
বিষ্ণু বললেন, বিষ্ণু মানে এখানে কে দুটি গোপী মধ্যে এক একটি কৃষ্ণ, অথবা দুটি গোপী ভিতরে একটি কৃষ্ণ, অথবা দুটা কৃষ্ণের মধ্যে এক একটি গোপী। ওই যে এত লক্ষ কোটি গোপীগণ তাহার ভিতরেতে যে আছে, উনি এখানে তে বিষ্ণু, চাহে ওটা ক্ষিপ্র গতি যারা হোক তাহা যে কোনো ভাবে হোক, ওইটা হচ্ছেন বিষ্ণু। ওই বিষ্ণুটা এখানে স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবান বলতে গেলে মথুরেশ এবং দ্বারকেশকে বুঝবে, কৃষ্ণকে বলবে না। কেন? ওখানেতে গন্ধ আছে। স্বয়ং ভগবান হলেও ব্রজেতে তাহার ভগবত্তাটা প্রকটিত নাই। এই জন্য প্রথমেই বলছেন যে এতে চ অংশকলা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ওখানে তিনজনকে মিলিত ভাবে তো ওখানে বলা হয়েছে স্বয়ং ভগবান, কিন্তু ব্রজে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন তিনি স্বয়ং ভগবানের থেকেও আরও যদি কিছু থাকে তার মধ্যে থাকলেও সেইটি প্রেমের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। সেখানে তাকে যশোদা মা, সখা, এমনকি সেবকবর্গ, গোপীগণের কথাই বলে। যদি কেউ বলে যে ভগবান তারে তাকে ভেঙচাবে, তার ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে, এমনকি কৃষ্ণ যদি বলেন যে আমি ভগবান তাহলে বিদ্রুপ করবে, হাসবে, ওরা সব ঠাট্টা করবে। এই জন্যে এখানে একেবারেতে মধুর শাশ্রিত, অথবা মধুর মানে এখানে সবই দাস, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, তিনটাকে ধরা। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দ, ইনার ভগবত্তা থাকলেও সেটি আচ্ছাদিত। তো ওই যে ভগবান, ওই ভগবানের প্রতি, কোন ভগবানের প্রতি? গোপীগণের অনুসরণ করে, গোপীগণের ভাব পর্যন্ত তাহার দের হবে। ভক্তি মানে কি? পরাভক্তি মানে কি? পরাভক্তি মানে শ্রেষ্ঠা ভক্তি। এখানে শ্রেষ্ঠা ভক্তি এখানে অর্থ করা হবে না, ওটাই সাধারণ লোকের পক্ষে। পরাভক্তি মানে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ বলেছেন গোপী ভাব, গোপীগণকে অনুসরণ করে যে রাগানুগা পরে রাগাত্মিক হয়ে যায়, কালক্রমেতে ওইটি হবে। গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব ছিল ওই ভাবটা, এর মধ্যে তাহাদের অধিকার ওই পরাভক্তি। অতএব ওখানেতে এই যদি শ্রবণ করে ওই রকম শ্রদ্ধা অনুসারে তে ভগবানের প্রতি প্রতিলব্ধ কাম, লব্ধ কাম কৃষ্ণের প্রতি, ওই যে ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপীগণের যে ভাব ছিল কাম, ওই কামকে প্রতিলব্ধ। প্রতিলব্ধ মানে নিত্য নিরন্তর নূতন ভাবেতে, নন ভাবেতে ওই প্রেম থার ভিতরেতে এসে কি করবে? ধীরে ধীরে ধীরে, কখন বুঝলে বুঝবে না, আর ওইকে হৃদরোগ আসুন কখন চলে গেল, যেরকম হয়তো বলেছেন তাহার লীলা কথা হচ্ছে নৌকা, কি নাম হচ্ছে নৌকা, নৌকাটাকে নিয়ে এসেছেন এই পারে ভসাগরের ও পারে বৈকুণ্ঠ অথবা ব্রজ, আর এ পারে হচ্ছে জগৎ, মহাপ্রভু কি কৃষ্ণ কি ভগবত তত্ত্ব কি বৈষ্ণব তত্ত্ব নাম নিয়ে এসেছেন এই পারে। ওরা আসলো যে নামকে, নামেতে আমরা আরূঢ় হয়ে ভগবানের লীলা কথা রূপি নৌকাতে আরূঢ় হয়ে আমরা ও পারে যাব। যখন ঘাটে আসলো দেখলো যে সে নৌকাটা এই পারে আছে আর আমি ও পারে হয়ে চলে গেল। সাধক যে আছে দেখলো যে ও পারে চলে গেল, আর নৌকাটা যেখানে যেখানে ঘাটেতে এই পারেতে এই পারে আছে, এমন নামের আর হরি কথার প্রভাব। এই শ্লোকেতে ওরা সবগুলি ব্যাখ্যা করেছে। এই পারে নৌকা থেকে গেল আর ও পারে পৌঁছে গেল, এইরকম ভাবে অচিরে নীরহ। আর সবগুলি ঔষধি আছে, কিন্তু হয়তো একটু দেরি করবে, অথবা তার মধ্যে আরও কতগুলি হতে পারে, কিন্তু হবে। কিন্তু হত্যা কষ্ট সাধ্য, কিন্তু এটা কষ্ট সাধ্য না, এটা খুব সুখ সাধ্য। এমন যে হরি কথা আর ওটি কার মুখেতে, তৃতীয় শ্লোক দশম স্কন্ধে প্রথম চতুর্থ নিবৃত্ততর সেই উপগীয়মানাত ঔষধাত শত্রু মনোভিরাম কপুত্তম শ্লোক গুণানুবাদাত। আর একটি কথা, অনেকে জিজ্ঞাসা করছে যে কালকে আমরা না পরশু গিয়েছিলাম মহাপ্রভুর ওখানে জগন্নাথ দর্শন, একটা বুড়ি মহাপ্রভুর কান্ধাতে পায়ে রেখে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছে, আর মহাপ্রভু বললেন না না এটাকে বারণ করে না গোবিন্দ, হায় হায় এর মতন আমার আবেশ নাই, এটাকে দর্শন কর। তখন তিনি শান্ত হলেন, ও দর্শন করে যখন নাবল তখন দেখলি যে আরে এইটা তো মহাপ্রভু, তখন তার বোধে প্রণত হয়েছিল নাকি লেখা আছে তো, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন যে না বলো না, তিনি একান্ত হতে তিনি জগন্নাথকে দর্শন। আর অন্যদিকে তিনি গীত গোবিন্দে পদ শুনছেন আর দৌড়াচ্ছেন, একটি কোনো যুবতী মেয়ে মাঠেতে গোবরের শুকনো কাণ্ডা বিনছে, আর মহাপ্রভু ওই গীত গোবিন্দের পদ শ্রীত কুচমণ্ডল শ্রীত কমলা কুচমণ্ডল হে হৃত কুণ্ডল হে কলিত দলিত বনমাল জয় জয়। মহাপ্রভু এক কাবে দৌড়াইলেন, হো সবাস নাই। তারপরে গোবিন্দ বললেন যে সে যখনই একেবারে ধরতে একেবারে যখনই যাচ্ছেন তখনই উনি বললেন আরে এটা মেয়ে লোকের গান করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হো সে এসে গেলেন, বলি যে তুমি গোবিন্দ যদি আজকে না বারণ করতে আমি প্রাণ প্রত্যাগ করতাম সিন্ধু জলেতে গিয়ে। তো এরকম হতে মেয়ে তো এক জাতি, অত সেখানে প্রাণ প্রত্যাগ করবার কথা বলছেন, আর ইনি এখানে বলছে যে আচ্ছা আমার কান্দাতে দিয়েছে কোনো কথা নেই, সাধারণ কথা, বিশেষ তখন সামান্য একটু তত্ত্বজ্ঞান হলেও উষামঞ্জস্য হয়ে যায়। কৃষ্ণ অথবা যে কেউ বিশেষ করে ভগবত তত্ত্ব, ও তিনি রস বৈশ্য হলেও রসিক হলেও যে রকম যে লোক তাহার কাছে তাহার ওই রকম ভাব প্রকটিত হয়। কংসের নিকটেতে যে কৃষ্ণ ওই কৃষ্ণ, কিন্তু তার ভাবান্তর, কুবজা কাছে সেই কৃষ্ণ কিন্তু ব্রজের ভাব নাই, মা যশোদা কাছে সেই কৃষ্ণ সেখানে বাৎসল্য ভাব আস, গোপী গণের নিকটেতে যত রকমের গোপী যার কাছে যখন থাকবেন ওই রকমভাবে ভাব নিয়ে চলে আসছে। ওই রকমভাবে এখানে দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরেতে যে আবিষ্ট হয়ে মেয়ে দর্শন করছে ওই অনুসারে তো চৈতন্য মহাপ্রভু হয়েছে। দেখি এইরকম আবেশ আমারও যদি হতো আমার জীবন ভিন্ন, ওই রকম আবেশের প্রয়োজনে এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বলেন যে কত বড় জিনিস এটা যে জগন্নাথের মধ্যে অবয়স এত হয়ে গেল যে কাঠের খাম্বা আছে না পাথরের খাম্বা না কি মানুষ আছে না মহাপ্রভু আছেন কোনো দিক বেদিক জ্ঞান নাই, আবিষ্ট হয়ে তাকে দর্শন যখন দর্শন করে নিল আবেশ তাহার যখন সমাপ্ত হয়ে গেল যখন নাবল দেখল যে সে তখন জ্ঞান তাহার। মহাপ্রভু বললেন যে সে এই রকম হয় আবেশ জগন্নাথ দর্শন। এখন ওই যে গান করতেছিল গীত গোবিন্দ পদ, যে কাণ্ডা বিনছিল কি লাকড়ি শুকনো বিনছিল, ওই মেয়েটার ওই রকম আবেশ ছিল কি না আর কি মহাপ্রভুর আবেশ ছিল? মহাপ্রভুর আবেশ ছিল শুনে, কিন্তু ওই মেয়েটার কোনো আবেশ ছিল না, এই জন্য তাকে যদি ছুঁইতেন তাহলে প্রাণ প্রত্যাগ, কিন্তু ওই মেয়েটার মধ্যে যদি সেই রকম আবেশ হতো তাহলে হয়তো তিনি তার পায়ে ছুঁই দিলে তার কোনো কিছু আসে যায়, যেরকম রায় রামানন্দ মেয়েদেরকে নিজে থেকে ভাও ইত্যাদি দেখাচ্ছে, তার অঙ্গ মার্জন করছে, তাকে নানা প্রকারের শৃঙ্গার ইত্যাদি করছে, তাহাকে মহাপ্রভু প্রশংসা করলেন। ওই রকম ভাবে শিখাচ্ছে দেবী দাসী, ওরম যখন রায় রামানন্দ নিজে শিখাচ্ছেন তখন বুঝব যে সে কিরকম হবে। এই জন্য ভাব দেখে যাহার মধ্যে ওটা ভক্তি থাকবে তাহার প্রতি, ছোট হয় দাসকে হয়তো প্রত্যাগ করে দিলেন, রায় রামানন্দকে প্রত্যাগ করবেন? এই জন্য যার মধ্যে যে ভাব আছে, গুণ আছে, ওই গুণটাই আমাদেরকে দেখ। এই জন্য সে ওখানে দোষাব হবে না, তার কন্ধার উপর চাপলে, কিন্তু অন্যত্র ওটা দোষাব হতে পারে। দেখে শুনে মানে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুসারে এইসবগুলিকে বিচার করতে হবে। মহাপ্রভু মধ্যে যখন প্রথম দর্শন করতেছিলেন তখন তাহার ছিল হয়তো দিব্য উন্মাদ হতে পারে, কারণ সেই তো প্রাণনাথ পাইনি, ব্রজেন্দ্র নন্দনকে তিনি দর্শন করছেন, কিন্তু ভাবটা সবসময় 24 ঘন্টা একরকম থাকবে তা নয়, দিনের মধ্যে কতবার চড়বে, কখন কখন নাবে, কখন কি হবে, যখন ওটা রাখতে লাগলো তখন ভাব বিষয়ে দেখছেন, কিন্তু ক্ষণ হয়তো খোঁজ ক্ষণ পরে নেবেছে, তখন গোবিন্দ বলেছেন, তখন আরও তার বাজ্যে এসেছে, তখন তিনি বলেছেন থাক, এটা কোনো অসুবিধা নেই। আমরা কালকে পরশু টোটা গোপীনাথেতে গিয়েছিলাম, আমলোক টোটা গোপীনাথ মে কল পরশু গে, তো ওহা পর কেসে গোপীনাথ জি প্রগট হুয়ে, আর যে নিত্যানন্দ প্রভুজি ওহা পর পধারে, ও নবদ্বীপ সে যা বঙ্গাল সে বহুত সুন্দর চাউল লে আয়ে থে, সূক্ষ্ম চাউল, আর সাথ মে এক রঙ্গিন আচ্ছা সা কই কপড়া লে আয়ে, গদাধর পণ্ডিতজি কো দিয়া, বড়ে প্রসন্ন হুয়ে, আর আজ নিত্যানন্দ প্রভুজি কো প্রসাদ দে, তো উনোনে চাউল কা তো অন্ন বানায়া, আর উসকে সাথ মে ক্যা বানায়েঙ্গে, উনোনে নিম নিসকা তেঁতুল ইমলি কা কোমল কোমল পত্তা দিয়া, নমক ঘর মে নেই হ্যায়, ঘরে নমক নাই, সমুদ্র কা পানি, উস সময় সমুদ্র পাশ মে নিকট, জেসে হাম লোগোকে দেখতে দেখতে কল তক অভি ইয়াহাঁ পর সমুদ্র থা, হামারাই ঘর অন্তিম থা, আমাদের মঠটাই অন্তিম ছিল, এরপরে আর ঘর ছিল না বাড়ি ছিল, কিন্তু আজ থোড়া সা উধার মে চলা গেল, এক অর রাস্তা নিকল গিয়া, হ্যাঁ বস, আর ইধর ইয়ে সব কিছু নেই থা, এই প্রভুপাদ জি কা পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ উধার মে বলো, তো বাকি সব এসা হি, তো ইয়ে সব জলদি সে ইতনা জলদি বদল গিয়া, তো উনকে ঘর মে নমক নেই থা, নমক রাখতে নেই থে জান বুঝ করকে, যদি ইনসে ভি ইনকি দাসিয়া, ইনকি ইয়ে হ্যাঁ রাধাজি স্বরূপা, আর ইনকি দাসিয়া হ্যাঁ রূপ সনাতন রূপী রূপ মঞ্জরি, আর ইয়ে সব রূপ সনাতন রঘুনাথ গোস্বামী অথবা ষোড় গোস্বামী, জব ওই লোক জীবন ভর আপনা মুখ মে লবণ নেই দিয়া, অলবণ ওটা কি মাধু করি কি সুখোজ রুটি ইয়ার্চন, তো ইয়ে গদাধর পণ্ডিত কে লিয়ে কেসে সম্ভব হোক, রঘুনাথ দাস কে লিয়ে কেসে সম্ভব হোক, ঘর মে নমক নেই, ইমলি কা পত্তা কোমল কোমল লে আয়, আর সমুদ্রকে পানি দে করকে নমকিন বানায় পড়া, আর উসকা সুন্দর একদম ও চটনি জিসকো কহতে হ্যায় তো খুব মধুর অম্ল উনোনে তৈয়ার কিয়া, যাহাঁ পর রসোইয়া রাধা জি হুঁ, আর উসকা একত্র করনে বালা সামান নিত্যানন্দ প্রভু মানে বলদেব জি হুঁ, ও কেসা উসমে রসাস্বাদ হোগা, भोग लगाया गोपीनाथ जी को, और जब ही बैठने वाले थे इतने में हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण कहते हुए आचंबित से महाप्रभु बिना निमंत्रण दिए वहां पर आ गए। अजय ये तुम्हारे की व्यवहार, ये तुम लोगों का कैसा व्यवहार? जहां पर गदाधर रसोई बना रहा और नित्यानंद प्रभु हैं, इतना सुंदर चीज ले आए और गोपीनाथ का तुम लोगों ने मिल करके भोग लगाया, और इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, नहीं कहने से भी इसमें हमारा अधिकार है, इसलिए हम तो बिना बुलाए ये प्रसाद पाएंगे। बस वो भी बैठ गए, बस दोनों प्रभु को इतने में और द्वैताचार्य भी पहुंच गए, बस तीन प्रभु ये बैठे, और गदाधर पंडित थे, गोविंद जी थे ही, और दो चार भक्त लोग उसी में आ गए। महाप्रभु मांग करके वो प्रसाद पाए, जो अवशिष्ट रहा तीनों के बाद में भक्त लोगों ने लूट लिया, पत्ता ही लूट लिया उन्होंने, वो लूट लिया, और उनके हाथ से दूसरे जितने भक्त हैं वो सब लूट करके छीन करके परस्पर खान। इस तरह से वहीं पर ये हुआ, और सनातन गोस्वामी का बतलाया, सनातन गोस्वामी अपने को मुसलमान जैसा समझते, कभी जगन्नाथ के मंदिर में नहीं। महाप्रभु ने ठीक दोपहर में उनको निमंत्रण भेजा, जिसे सनातन आज आकर के प्रसाद पाएगा गोपीनाथ टोटा। उस समय में जेठ का महीना, समुद्र के किनारे बालू जल रहा था, उस बालू पर आए और इतने आवेश होकर के नाम कर रहे थे कृष्णा या महाप्रभु की चिंता। आज हमारा कितना सौभाग्य है, महाप्रभु जी स्वयं बुला रहे हैं प्रसाद देने के लिए, बस इसी की चिंता करते करते आविष्ट होकर के आ रहे थे, पैर में छाले पड़ते गए और मालूम ही नहीं। जब यहाँ आप पर पहुंच गए, कहे तुम कैसे आया, तुम रास्ते से आया या उधर से समुद्र के किनारे किनारे आया? प्रभु हमारा रास्ते पर आने का, राजमार्ग पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उधर से नहीं आया, मैं आया समुद्र के किनारे बालू पर। देखे तुम्हारा पैर तो देखे, तो पैर देखा तो सब फफोले पड़े हुए हैं उनके ऊपर से नीचे, बैठने तो भाई। ये सुन करके याद आती है ब्रज की, गोवर्धन दोपहर में जल रहा है तवे के समान, और कृष्ण गोचारण करते 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 गोवर्धन की नीचे की पहाड़ी पर गोचारण कर रहे हैं, और ऊपर में पहाड़ के ऊपर में राधा जी वहां से देख रही हैं कृष्ण को। खूब गर्म है, ऊपर से भी गर्मी पड़ रही, नीचे से भी ये हो रहा है, उनको भी फफोले पड़ रहे, उनका तो चरण कमल और भी कोमल, किंतु उनको पता ही नहीं है गिरिराज गोवर्धन को इंद्र वज्र से मारे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। स्वप्रेष्ठ हस्ताम बुजसौ कुमारजे सुखानुभूते रतिभूमि वित्ते महेंद्र वज्रा अतिमप्यजानन गोवर्धनो मे दिशताम अभीष्ट। उनको वज्र से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, बड़े सुख से आनंद से हो रहे हैं जी, आज कृष्ण के मैं हस्त कमल के ऊपर में चढ़ा हुआ आनंद। ऐसा ही भक्तों को होता है, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, एक तो उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, दूसरा यदि माने भी तो इतना अविष्ट है जो संसार का कोटि कोटि दुख भी उनको प्रतीति नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी को कुछ मना मालूम ही नहीं, बड़े आनंद के साथ में चले आए, फफोले अपने जगह पर पड़ते हैं। उसी प्रकार से महापुरुषों को जबकि मध्यम अधिकार से धीरे धीरे ऊपर में उठता है उत्तम मध्यम अधिकारी, अथवा उत्तम अधिकारी पहुंचता है उत्तम में कनिष्ठ, उसका कोई भी कष्ट नहीं रह जाता, कोई भी कष्ट, भावावस्था में कष्ट आते हैं किंतु प्रतीति नहीं होती, अब प्रेमावस्था में कष्ट आता ही नहीं, जिसके साधन करने में साधन अवस्था में ही क्लेश अग्नि भक्ति है, वो सब क्लेश दूर हो जाते हैं। भावावस्था में क्लेश रहते भी हैं थोड़े, उनको प्रतीति नहीं होती, और प्रेमावस्था में एकदम संपूर्ण रूप से रहता नहीं है, यही प्रेम का है। अखिल क्लेश अभिज्ञाता,
ये तो अखिल क्लेश है,
इसमें होता है, इसमें भावावस्था में, और उस समय रहता ही नहीं है क्योंकि कर्म फल उस समय है ही नहीं, इसलिए अप्राकृत ये नहीं है। जब उनको नित्य परिकर्ण भी माने तो उत्तम भक्त तो मानेंगे ही सनातन गोस्वामी को, इसलिए उनको कष्ट की प्रतीति नहीं है। अंततः उनसे नीचे भी रहेंगे, मध्यम अधिकार में भी ऊपर में जब जाएंगे तो ये कष्ट को वो कष्ट ही नहीं माने। कृष्ण के दर्शन में, उनकी कथाओं के सुनने में यदि दुख भी है उसको वो सुख मानते हैं, नागनिया पनि सुख, वहाँ रागात्मिका में भी और रागानुगा में भी ऐसा ही होता है। ये भी कल वहाँ पर हम लोगों ने बतला।